हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं दराति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरधारुण बिंबफलाधरोष्टा पुलिंद सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जानि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवेस्तवे वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधो सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं कुरु तु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदीकार भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 11। कृपया इन परम पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज सूत गोस्वामी भगवान के छठे अवतार के विषय में बता रहे हैं, तो कृपया मेरे साथ साथ कहिए। षष्ठम अत्रिरपत्यत्वम् ऋतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवा षष्ठम् अत्रिरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रिरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रिरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रीत्य पत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रिरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रिरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् षष्ठम् अत्रिरपत्यत्वम् त्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान्। शब्दों का अर्थ देखेंगे। षष्ठम अत्रिरपत्यत्वम्, षष्ठम मतलब छठा, अत्रिर मतलब अत्रिका, अपत्यत्वम यानी पुत्रत्व, वो अत्रि मुनि का पुत्र जो छठा अवतार, वृत यानी मांगने पर, और उसे प्राप्त कैसे हुआ, मांगने पर, वृत प्राप्त मांगने पर प्राप्त किया गया, किसने मांगा, अनसूया, अनसूया देवी ने मांगा, तो फिर उनको ये छठा पुत्र प्राप्त हुआ। आन्वीक्षिकीम, आन्वीक्षिकीम का मतलब होता है आध्यात्मिक विषय पर, यानी उनके आने का कारण क्या था कि वो आध्यात्मिक विषयों पर शिक्षा दे सकें, किसको, अलर्क, अलर्क को प्रह्लाद, यानी प्रह्लाद आदिव्य, प्रह्लाद मतलब प्रह्लाद महाराज और आदिव्य मतलब और भी बहुत सारे उन्होंने शिष्य बनाए थे जिनको उन्होंने आध्यात्मिक विषय पर शिक्षा दी थी, ऊचिवान यानी बताया था। अनुवाद देखेंगे, सती पुरुष अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे, वे अनुसूया द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यानी यदु, हयहया आदि को आध्यात्मिक विषय का उपदेश दिया था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने ऋषि अत्रि तथा अनुसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मांड पुराण में सेवारत पत्नी के संग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा आलर्क, प्रहलाद, यदु, हेहया आदि को विशेष रूप से इसका आदेश दिया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ओम अज्ञान देवनंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज इस 11 स्कंद में, 11 अध्याय में, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 11 श्लोक में हम भगवान के छठे अवतार यानी दत्तात्रेय के विषय में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने तीन भगवान के अवतार से, अभी छठा पढ़ रहे हैं, लेकिन तीन तक पिछले क्या हुआ, इससे पहले कौन सा पढ़ा था, कपिल मुनि, और उससे पहले नर नारायण ऋषि, उससे पहले देवर्षि नारद। तो ये सब यानी देवर्षि नारद और नर नारायण ऋषि और कपिल देव, और उसके बाद आज भगवान के छठे अवतार दत्तात्रेय, ये केवल शिक्षा देने के लिए आए थे कि जीव मात्र को यह शिक्षा प्राप्त हो कि वो इस संसार में आकर सुख भोगने की बजाय, इस संसार में संसार से सुख की आशा रखने की बजाय वो आध्यात्म में उन्नति करें, अपने रियल स्वरूप को पहचाने और फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचकर भगवान के पास आ जाए। तो इन्हीं के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह भिन्न भिन्न अवतार लिए थे। भगवान तो सदैव अवतार लेते रहते हैं, हर कल्प में भगवान के अलग अलग अवतार, मतलब वही रिपीट होते हैं अवतार, लेकिन कल्प अलग अलग होता है तो उसमें अवतार लेने की विधि भी थोड़ी थोड़ी अगर डिफरेंट होती है, मतलब अगर किसी किसी शास्त्र में लिखा होता है ना अलग तरीके से, तो उसमें ये नहीं, क्योंकि भगवान अलग अलग युगों में अवतार लेते हैं तो कोई और तरीके से अवतार ले लेते, कभी कोई और तरीके से अवतार लेते। अभी हमारे श्लोक में क्या लिखा हुआ है, षष्ठम अत्रेरपत्यत्वम वृतः प्राप्तो नसुया, यानी क्यों प्राप्त हुए थे, मांगने पर प्राप्त हुए थे, किसके मांगने पर, अनुसूया के मांगने पर, है ना, ये श्लोक में लिखा हुआ। अभी हम चौथा स्कंद जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को कुछ और कथा मिलेगी कि वो जो है वो दत्तात्रेय के तपस्या से प्राप्त, मतलब सॉरी अत्रि ऋषि, दत्तात्रेय जो अवतार है वो अत्रि ऋषि की तपस्या से प्राप्त हुए थे। यहाँ पर क्या बता गया कि अनुसूया की ना तपस्या से या उनके मांगने पर प्राप्त हुए थे। तो इन दोनों कथाओं को हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से इस संसार में आए थे। तो सबसे पहले जो श्लोक में हमें बताया गया, क्या बताया गया, व्रता प्राप्तो अनुसूया, के अनुसूया के मांगने पर प्राप्त हुए थे। वास्तव में अनुसूया देवी जो है वो संसार की परम पतिव्रता स्त्रियों में से है, जो अपने पति के धर्म में, मतलब जो अपने पतिव्रता धर्म का बहुत ही कठिनाई से पालन करती हैं, उनको पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। और जो पतिव्रता स्त्री यानी जो भक्त पति होते हैं और उनकी भक्ति में सहायता करती है और मतलब पति की बहुत बहुत सेवा करती हैं, तो उनके अंदर एक दैवी गुण आ जाता है जिससे वो भगवान को भी प्रसन्न कर देते हैं। हमने सुनी है इस तरह की बहुत सारी इतिहास में होती हैं कहानियां, जैसे सती, वो सावित्री इत्यादि। तो उन्होंने क्या कहना, सती सावित्री ने धर्म यमराज से अपने पति के प्राण मांगे थे, तो मतलब उनके अंदर इतना बल आ जाता है। जैसे हम वृंदा महारानी की कथा में भी उनकी पतिव्रता के विषय में सुनते हैं, तो उन्होंने भगवान को श्राप देकर भगवान को शालिग्राम में परिवर्तित कर दिया था। तो पतिव्रता स्त्रियों की एक महानता है, उनके अंदर इतना तेज होता है, उनकी तपस्या में, उनकी ये पतिव्रत धर्म में बहुत ज्यादा बल होता है। तो एक बार क्या हुआ, मांडव्य मुनि तपस्या कर रहे थे, एक मुनि थे उनका नाम था मांडव्य मुनि, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक चोर आकर उसी जगह पे आके छिप गया, क्योंकि अब वो तपस्या कर रहे थे, वो तो देख रहे नहीं उन्होंने, तो चोर आके छिप गया। उसके पीछे पीछे राजा के सिपाही भी आ रहे थे, तो राजा के सिपाहियों ने देखा चोर इसी घर में घुसा है, तो अंदर जाके देखा तो मांडव्य मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनसे पूछा आपने चोर देखा है, आपने चोर देखा है, तो वो तो तपस्या कर रहे थे, वो तो सुने ही नहीं उनकी बात, तो उन्होंने आंसर नहीं दिया ना कोई भी। तो चोर ने बोला कि यही तो चोर होगा, ये देखो तपस्या का ढोंग कर रहा है, असल में यही चोर होगा, अभी हम चोरी करके यहाँ पर है ना ऐसे नाटक करके बैठ गया है, इसको पक्का के लेके चलते हैं। तो अब वो मांडव्य मुनि ने कुछ बोला नहीं, देख के हैरान हो गया कि मुझे पकड़ के लेकर जा रहे हैं, तो फिर भी भगवान की इच्छा समझ के वो उनके साथ जा रहे थे। रास्ते में एक शील्यवती, शील्यवती के जो कि बहुत पतिव्रता थी, वो भी बहुत ज्यादा पतिव्रता थी और वो अपने पति के साथ जा रही थी, तो उन्होंने जब मांडव्य मुनि को देखा तो उनको टोका कि मतलब कुछ भी बोला, क्या बोला कि है ना आप बोल सकते हो कि आपको बोलना चाहिए ना, मतलब इस तरह से कुछ टोका, लेकिन उसने ना बहुत ही बुरे लफ्जों में उनसे बात की। तो फिर जो मांडव्य मुनि है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उनको बोला, उनकी पत्नी शील्यवती के सामने बोला कि कल तुम्हारा अंत हो जाएगा, कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब शील्यवती ने ये सोचा कि कल मेरे, जब इन्होंने ये सुना कि मेरे पति को यह श्राप मिला है कि कल उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो शील्यवती बहुत पतिव्रता थी, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर कल मेरे पति की मृत्यु होगी तो मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि कल होगा ही नहीं, कल आएगा ही नहीं, क्योंकि कल मेरे पति की ना मृत्यु होने वाली है ना, तो मैं ना मतलब सूर्य को उदय होने से ही रोक दूंगी कि कल सूर्य उगेगा ही नहीं तो कल होगा ही नहीं। तो ऐसी जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तो समय बीतता गया, सूर्य उदय हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, उनके मुख से निकल गया, तो सूर्य के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निकल सके। तो सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान हो गए कि अब जब सूर्य नहीं उगेंगे मतलब फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना, सारी सृष्टि का जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया वो सारा का सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो देवताओं को इस समय सहायता की आवश्यकता थी कि किसी तरह से हम इस दुविधा से बचें। तो उस समय देवताओं ने अनुसूया देवी की सहायता मांगी थी, वो फिर अनुसूया देवी के पास गए थे सहायता मांगने के लिए। इसलिए उन्होंने, अनुसूया देवी ने फिर देवताओं की सहायता की, जिसके कारण, क्योंकि अब वो भी सती थी, तो फिर शीलवती को उन्होंने समझाया कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। और फिर ये भी बताया कि सबकी मृत्यु जो होती है वो काल और उनके कर्मों के अनुसार पहले से निर्धारित होती है, तो फिर ना एक ना एक दिन तो सबकी मृत्यु होनी है कुछ इस तरह। और फिर इसके बाद उन्होंने शल्यवती ने सूर्यदेव को आदेश दे दिया कि आप निकल सकते हो। तो इस तरह क्योंकि अनुसूया देवी ने इनकी देवताओं की बहुत बहुत सहायता की थी, तो फिर उन देवताओं ने अनुसूया माता को कहा कि आप हमसे वर मांगो। तो अनुसूया देवी ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वाकई में मुझे वर देना चाहते हैं, तो क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब गए थे उनके पास, तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश सामने खड़े थे और उनको कहा कि मुझे पुत्र की कामना है, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, ऐसा उन्होंने वर मांगा। क्योंकि भगवान में उनका इतना प्रेम नहीं था, बस अब वर मांगने के लिए कहा है, तो बोला मुझे पुत्र चाहिए आपके जैसा, यानी कि ऐसा शीलवान पुत्र होना चाहिए, ऐसा शक्तिमान पुत्र होना चाहिए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के अवतार हुए सोम यानी चंद्रमा, और शिव जी के अवतार हुए दुर्वासा। दुर्वासा मुनि को जानते हैं ना, सब श्राप देते, बहुत बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होता हो जाते हैं, ये शिव जी के अंशावतार हैं। और क्योंकि शिव जी भी भोलेनाथ हैं, उनको आशुतोष कहा जाता है। आशु का मतलब होता है जल्दी, और तोष का मतलब होता है प्रसन्न हो जाने वाले, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। और भगवान विष्णु जो है वो दत्तात्रेय के रूप में देवी अनुसूया के गर्भ से प्रकट हुए। तो ये जो आज हमारे श्लोक में लिखा गया है ना कि षष्ठम अत्रिरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो न सूया, कि अनुसूया देवी के मांगने पर वो प्राप्त हुए। लेकिन जब हम चौथे स्कंद में वास्तविक दत्तात्रेय की जो एक दूसरी कथा पढ़ेंगे, ये कहाँ पर लिखी हुई श्लोक उपाय जी बताते हैं। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है वर्णन में, तात्पर्य में, ब्रह्मांड पुराण में सेवारत पत्नी के प्रसंग में। ये ब्रह्मांड पुराण की कथा है जो अभी मैंने आपको बताई ना। लेकिन भागवतम में ये दत्तात्रेय का अवतार किस प्रकार हुआ उसके विषय में हम पढ़ेंगे। अत्रि मुनि एक प्रजापति है। प्रजापति का मतलब होता है जो प्रजा को उत्पन्न करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के जो पुत्र है ना, अब ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र तो ब्रह्मचारी बन गए, जैसे नारद मुनि भी ब्रह्मचारी हैं, सनक सनातन, सनंदन और संत कुमार, ये चार कुमार भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने भी ना प्रजा की उत्पत्ति नहीं की। लेकिन ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र जैसे दक्ष प्रजापति, उसी तरह अत्रि मुनि भी प्रजापति हैं, और उनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आपको सृष्टि की उत्पत्ति करनी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो बना दी थी, लेकिन उसमें रहने के लिए भी तो जीव चाहिए। अब 14 भवन बन गए हैं, उनके अंदर रहने के लिए कोई है ही नहीं, तो फिर इतनी सारी सृष्टि का निर्माण करने की, जैसे हम एक बहुत बड़ा बंगलो बनाए और वो खाली वीरान पड़ा हो, तो फिर क्या फायदा। सब जो बनाएगा पिता, वो अपने बच्चे को बोलेगा ना कि तुम जाओ उसमें रहो, उसमें है ना सब सुविधाएं रखो, और यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको कहा। तो फिर लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ेगी। तो अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसूया के साथ तपस्या करने के लिए स्थान खोजने लगे। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय स्थान, जहाँ पर बहुत ही सुंदर बाग थे, बहुत ही सुंदर झरने, नदियां और इस तरह की एक बहुत ही सुंदर जगह पर वो गए और तपस्या करना शुरू किया अत्रि मुनि ने। और अत्रि मुनि ने 100 साल तक एक पेड़ पर खड़े होकर तपस्या की, 100 साल तक। और उस समय वो उनका भोजन केवल हवा थी, मतलब वो केवल श्वास लेते थे और कुछ आहार नहीं ग्रहण करते थे। और वो प्रार्थना कर रहे थे कि जो संसार के ईश्वर हैं, वो मेरे पुत्र के रूप में आकर अवतार लें। इसी तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे। 100 साल तक उन्होंने ये प्रार्थना की केवल एक पेड़ पर खड़े होने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि चाहे हम कितने ही बड़े भक्त क्यों न हो, जैसे प्रजापति थे वो और डायरेक्ट से ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन उनको ये आदेश था ब्रह्मा जी के द्वारा कि आपको प्रजा की उत्पत्ति करनी, लेकिन ऐसे नहीं कि गाय और कुत्ते बिल्लियों की तरह प्रजा और संतान उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि संतान उत्पत्ति एक ऐसा दिव्य कार्य है कि जिसको करने से पहले तपस्या करनी होती है। हम देखते हैं जब जब भागवतम में संतान उत्पत्ति की बात आती है तो उससे पहले तपस्या की जाती है। वेश्णी और सुतपा सत्यरूपा सबने जितने भी संतान उत्पत्ति की है ना, उन्होंने सबसे पहले तपस्या की है। ये गर्भधान एक संस्कार होता है, इसलिए संतान उत्पत्ति से पहले श्री प्रभुपाद जी ने भी कहा कि संतान उत्पत्ति से पहले गर्भधान संस्कार करने की आवश्यकता होती है। अब गर्भधान संस्कार में क्या होता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर तपस्या करके भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी संतान जो है वो भगवान की भक्त बने, संसार में आकर संस्कृत हो, उसके विचार शुद्ध हो, उसका जीवन शैली शुद्ध हो, वो भौतिक कार्यों में ज्यादा निमग्न न हो बल्कि अपने आध्यात्मिकता की तरक्की के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। तो जो 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जन्म से वो पहले शुरू होते हैं। जन्म अभी गर्भाधान तो हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ मतलब पति पत्नी का विवाह होता है और उसी समय से गर्भाधान संस्कार शुरू हो जाते हैं। वो फिर वो चलते रहते हैं, जैसे पहले क्या होता है, गर्भाधान करने से पहले संस्कार होते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 महीने का शिशु होता है पेट के अंदर, तब होते हैं, फिर 7 महीने का होता है, फिर होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चलो ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप नहीं भी करते हो, संक्षिप्त में बताया श्रील प्रभुपाद ने कि गर्भ धारण करने से पहले कम से कम 50 माला पति पत्नी को मिलकर करनी चाहिए, मंगला यानी प्रभात साधना कंटिन्यूस करनी चाहिए, और शास्त्र के अनुसार संभोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में 7.12 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर्षभा, कि वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो साक्षात में हो। तो ये भगवान की योजना है कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मैथुन जो है ना वो तरीके से किया जाता है। तो ये क्यों, क्योंकि संतान उत्पत्ति एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसमें क्योंकि कितना कष्ट होता है अगर देखा जाए तो संतान गर्भाधान से लेकर जब तक हम जीवित होते हैं, संतान हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमें उनके लिए हर चीज का। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मैरिज लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट संतान, संतान के बगैर, क्योंकि ये इसीलिए किया गया है, मतलब ये विधि इसीलिए बताई गई है क्योंकि इतना दुखमय जीवन होता है। अगर खाली देखा जाए बच्चे की पैदाइश से लेकर परवरिश तक बहुत बहुत अनाकष्ट माता पिता को झेलने पड़ते हैं, तो इसमें अगर तनिक सुख न हो ना तो शायद ही कोई ये कार्य करने के लिए कोई तैयारी ना हो कि संतान उत्पत्ति करे। तो इसलिए ये भगवान की योजना है कि इसमें थोड़ा सा सुख डाल दिया है, भौतिक सुख है वो, उसमें कोई भी आध्यात्मिकता नहीं है, लेकिन ये भौतिक सुख है। परंतु यदि कोई जीव, यहाँ पर कोई मनुष्य रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन खाली सुख प्राप्त करना चाहते, इंद्रिय भोग करना चाहते, तो वो प्रमाणिक नहीं है। उसको भगवान ने नहीं कहा है धर्मा विरुद्ध भूतेषु। तो अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे, 100 साल तक उन्होंने तपस्या की, और इसे करते करते एक समय आया कि उनके सर से अग्नि उत्पन्न होने लगी और वो अग्नि की ताप इतनी तीव्र थी कि वो गौलोक नहीं मतलब स्वर्ग लोक तक जाने लगी, और स्वर्ग लोक में जितने भी देवता हैं वो सब परेशान होने लगे। तो सब देवता परेशान हो गए कि अगर ये अग्नि इतनी ही बढ़ती गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ब्रह्मांड पूरा जल जाएगा। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु और महेश ने सोचा कि हमें अत्रि मुनि की तपस्या को अब फलीभूत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की है तो उनके मनोरथ को जाके पूरा करना चाहिए। अत्रि मुनि तपस्या कैसे कर रहे थे, वो जो उच्चारण कर रहे थे ना, वो ऐसे कह रहे थे, शरणं त्वं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजाम् आत्मं समामीहम् प्रच्छत्त प्रचत्वति चिन्तयम् प्रचत्व इति चिन्तयम् शरणं त्वं प्रपद्येऽहम् य एव जगदीश्वर प्रजाम् आत्मं समामीहम् प्रयच्छत्व इति चिन्तयम् यानी शरणं त्वं प्रपद्येऽहम् मैं आपकी शरण में हूँ। य एव जगदीश्वर जो इस संसार के जो इस जगत के ईश्वर है मैं उनकी शरण में हूँ। प्रजा आत्मा समामेहम् प्रजा मतलब मुझे एक पुत्र चाहिए कैसा चाहिए आत्मा समामेहम् जैसे आप हो ऐसा पुत्र चाहिए। प्रयच्छत् इति चिंतयम् वो मन में इसी तरह चिंतन कर रहे थे क्या कह रहे थे कि हे जगदीश्वर मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। हे जगदीश्वर मैं आपकी शरण में हूँ मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। अब यहाँ पर एक बात समझने की है जो मूल बात है वो क्या है कि वो ये तो प्रार्थना कर रहे थे कि हे जगदीश्वर यानी कि वो ये जानते थे कि इस संसार के कोई ईश्वर है इस जगत के कोई ईश्वर है परंतु वो ईश्वर कौन है वो परम शक्ति वो परम भगवान वो कौन है वो उसको नहीं जानते थे। तो सरल साधारण शब्दों में क्या कह रहे थे एव जगदीश्वर कि आप जो भी हो तो जगदीश्वर ना मतलब कोई तो है लेकिन वो कौन है वो नहीं जानते थे। तो भगवान कौन है उसके विषय में उनको कुछ खबर नहीं थी। श्रील रूपा जी बताते हैं 7.14 में जैसे भगवान के भक्त अलग अलग भक्तों के उनको भक्त नहीं कहा जाता है उनको सुकृतिनो कहा जाता है। कैसे कहा जाता है भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आतो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने ये नहीं कहा मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं शब्द को देखे अगर भगवान को भगवान कहते जनाः सुकृतिनो अर्जुन ये अच्छे हैं एटलीस्ट वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने दुखों के निवारण करने के लिए भी आए हैं तो मेरे पास आए हैं। इच्छाओं के निवारण करने के लिए वो जाकर कहीं और भीख नहीं मांग रहे हैं वो अपने बाप के पास आए हैं। वो अपने दुखों का निवारण करने के लिए भी सही जगह पर यानी भगवान के पास आए हैं लेकिन उनको भक्त ने कहा भगवान ने ना उन्होंने उनको क्या कहा सुकृतिनो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्त को मतलब जो जीव को ये पता नहीं होता है कि भगवान कौन है लेकिन फिर भी वो भगवान के पास जाता है तो वो सुकृतिनो अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन वास्तविक भक्ति क्या होती है भक्ति केवल केवल कृष्ण की जाती है और किसी की नहीं जाती। पॉइंट आउट किया जाए कि जैसे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशम सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल कृष्णानु पर्टिकुलर कृष्ण के ऊपर उन्होंने अना पॉइंट किया कि कृष्ण की अगर भक्ति की जाती है तो वो शीलनम भक्ति उत्तमा सबसे उत्तम भक्ति विशुद्ध भक्ति वही होती है जो कृष्ण को जानकर कृष्ण के। अच्छा यहाँ पर ये बात भी आपको क्लियर कर दें कि अगर हम कृष्ण को जानकर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वो शुद्ध विशुद्ध भक्त है लेकिन अगर हम कृष्ण को नहीं जानते हैं और हम जैसे भक्ति कर रहे होते हैं किसी भी इच्छा से भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि भगवान ही सर्व समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं आदि हैं नहीं जानते हैं तो उसको सुकृतिनो कहा जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट से कृष्ण को प्यार करते हैं कृष्ण को प्यार करते हैं कृष्ण से प्रेम करते हैं कृष्ण की सेवा करते हैं फिर भले हमें कृष्ण की भगवत्ता का पता नहीं है तो भी है ना वो विशुद्ध भक्ति वो प्रेमा भक्ति है वो तो उससे भी आगे है। जैसे गोपियां जैसे माता यशोदा इनको भले खबर मतलब अगर किसी को पता भी होगा कि कृष्ण क्या है भगवान है तो उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जो भगवान के दोस्त हैं जो भगवान के सखा हैं ग्वाल बाल जो हैं उनको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है या क्या है कुछ भी नहीं लेना देना उनको खाली ये खबर है गोपियों को खाली ये खबर है कि कृष्ण से हम प्रेम करते हैं वो कौन है वो क्या है उसकी पोजीशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माता यशोदा को खाली ये पता है कि कृष्ण मेरा बच्चा है, और जो ग्वाल है उनको ये पता है। वो क्या करते हैं, वो स्वतः प्रेम करते, प्रेम में स्वतः सेवा होती है ना। जैसे ग्वाल बाल, हालांकि वो कृष्ण के सखा है, लेकिन फिर भी जब जाते हैं वन में, तो वो कोई कृष्ण के है ना यहाँ से कंधों से दबा रहा होता है, कोई पैरों से दबाता है, कोई बालों को सहज कर रहा होता है, कोई भगवान को कैसे श्रृंगार कर रहा होता है। गोपियां सदैव कृष्ण से प्रेम करती रहती हैं, उनके लिए माखन बनाती हैं, उनको खिलाती हैं, भले वो कोई भी तरीके से कर रही हैं। वो प्रेम का आदान प्रदान तो किसी तरह से भी किया जा सकता है, तो वो तो प्रेमी के भाव के ऊपर है कि मैं कैसे अपने प्रीतम से प्रेम करूं। वो उसमें प्रवेश नहीं, लेकिन वो केंद्र बिंदु यदि कृष्ण है, तो यदि अब यशोदा जो है वो कृष्ण से प्रेम करती है तो छड़ी से मारती है, उसको रस्सी से बांधती है, लेकिन केंद्र बिंदु कृष्ण है, उसको नहीं मानती कि वो भगवान है। तो यदि हम केंद्र बिंदु कृष्ण को रखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेमा भक्ति होती है। यदि हम कृष्ण को जानकर कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई अभिलाषा नहीं होती, तो वो शुद्ध भक्ति है। कि केवल कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कोई अभिलाषा नहीं है, कृष्ण को जानते हैं मगर के वो भगवान है ना। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति करता है, और मतलब कृष्ण की भक्ति कर रहा है लेकिन उसको परम पुरुष भगवान नहीं मान रहा है, लेकिन कृष्ण की ही कर रहा है और किसी की नहीं कर रहा है, तो वो सुकृतिनो है, क्योंकि वो किसी इच्छा के साथ आ रहा है ना, जैसे भगवान ने बताया आतो जिज्ञासु अर्थात। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अत्रि ऋषि क्या प्रार्थना कर रहे थे कि या एव जगदीश्वर शरण त्वं प्रपद्यन्ते, मैं आपकी शरण में आया हूँ हे जगदीश्वर, यानी जगत के ईश्वर। तब अब भगवान ने जब मतलब ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ने जब ये प्रार्थना सुनी, तो सोचा कि हम तो सब जगत ईश्वर है। जगत ईश्वर का मतलब होता है पालने वाला, या फिर सृष्टि करने वाला, या फिर जो भी ईश्वर होता है यानी कि प्रभु। तो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं वो भी ईश्वर है, और शिव जी क्या कम है, वो विनाश करते हैं वो भी ईश्वर है, पालन करते हैं विष्णु तो वो भी ईश्वर है। तो ये सारी भगवान की शक्तियां हैं, ये ईश्वर हैं, परंतु परम ईश्वर नहीं है। परमेश्वर कौन है, ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण, और कोई नहीं हो सकता। तो जब इन्होंने सुना कि चलो ठीक है, अब हमें हम सबको बुला रहे हैं, ईश जगदीश्वर कहकर बुला रहे हैं, तो हम सब जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि भले वो जगदीश्वर कह रहा था, लेकिन भगवान को क्या खबर नहीं थी कि मैं जगदीश्वर हूँ वास्तविक। लेकिन क्योंकि वो भगवान को याद नहीं कर रहा था, वो जगदीश्वर को याद कर रहा था। यदि हम कृष्ण को याद करते ना, कृष्ण को, केवल कृष्ण की बात होती है हृदय में, केवल कृष्ण का स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति मध्याजिनोऽपि मम, जो डायरेक्ट से मेरा स्मरण करता है, जो सिर्फ मुझसे प्रेम करता है, सिर्फ मुझसे ही अपना संबंध जोड़ता है, उनको मैं प्राप्त होता हूँ। फिर बाकी जगदीश्वर हो, या सर्वसृष्टि के कर्ता हो, या फिर जो भी हो, अगर इस तरह से भगवान की शक्तियों के स्वरूप में भगवान को पूछते, तो भगवान स्वयं नहीं आते हैं, बल्कि जैसे आज वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों आ गए, कृष्ण नहीं आए। और बोला कि हाँ ठीक है, हम आ गए हैं, अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश है। तो जब अत्रिमुनि नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, उनके सामने तीन पुरुष हैं। अब उन्होंने कभी इनको देखा नहीं था, एक बस इनके चिन्ह देखकर वो समझे कि शायद ये होंगे। जैसे ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए थे और उनके हाथ में कुश था, कुश एक घास होती है, बहुत पवित्र मानी जाती है, वो ब्रह्मा जी के हाथ में थी। शिव जी अपने बेल पर बैठे हुए थे और उनके हाथ में डमरू था। विष्णु जी गरुड़ पर बैठे हुए थे और उनके हाथ में चक्र था। तो क्योंकि शास्त्रानुसार उन्होंने पढ़ा था, और उनके पिताजी ब्रह्मा जी ने बताया भी होगा, अरे हाँ, तो इन सबके चिन्हों के अनुसार वो पहचान गए कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश जी हैं। जब उनको देखा, उनको यकीन ही नहीं आया था कि मेरी प्रार्थना पर ये तीनों ऐसे प्रकट हो गए हैं। फिर उन्होंने सोचा मैं भाग कर उनके ना चरणों में प्रणाम करूं, लेकिन क्योंकि 100 साल तक वो एक पैर पर ही खड़े थे ना, तो एक पैर पर खड़े रहने की आदत हो गई थी, तो वो एक ही पैर से वो भाग भाग कर आए और उन्होंने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को दंडवत प्रणाम किया। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य में बताएंगे कि दंडवत प्रणाम का क्या मतलब होता है, वत का मतलब होता है की तरह, दंड मतलब डंडे की तरह सीधा खड़े होकर उन्होंने फर्स्ट टाइम भगवान ब्रह्मा विष्णु जी को प्रणाम किया और उन तीनों के बदन से, उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था, इतना तेज निकल रहा था कि वो अत्रि मुनि उनको देख नहीं सक रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और फिर थोड़े समय के बाद जब आंखें खोली और उनसे एक प्रश्न किया कि आप सब आए हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप में से किन को मैंने पुकारा है, यानी कि मैं तो प्रार्थना कर रहा था जगदीश्वर के लिए, तो वो इनडायरेक्टली ये पूछना चाहते थे कि आप में से जगदीश्वर कौन है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बताया कि हम सभी जगदीश्वर हैं, हम परमेश्वर नहीं हैं, लेकिन जगत के ईश्वर तो हैं। अब आपने जगदीश्वर के नाम से पुकारा है तो हम तीनों ही आए, तीनों जगत के ईश्वर हैं, एक पालन करने वाले, एक सृष्टि करने वाले, एक संहार करने वाले, तो इसलिए हम तीनों ही आए हैं, तो हम तीनों ही आपकी आशा को पूर्ण करने के लिए आपके पुत्र रूप को स्वीकार करेंगे। और इस तरह से इन तीनों महादेवों ने इनकी इच्छा पूरी की और ब्रह्मा जी सोम यानी चंद्र के रूप में, शिव जी दुर्वासा के रूप में और विष्णु के अंश दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र बनकर प्रकट हुए। तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में अभी भी दत्तात्रेय के पूजा होती है, उनका जो भी मतलब आविर्भाव होता है और ये सब उनकी पूजा पद्धति जो है वो कर्नाटक में होती है। एक बार क्या हुआ, रावण जैसे दत्तात्रेय तपस्या कर रहे थे और रावण वहां से गुजरे और रावण ने उनके सामने एक जल रखा होता कमंडल में, उस जल को दूषित कर दिया। फिर दत्तात्रेय ने ही उनको श्राप दिया था कि तुम मनुष्य मतलब तुमने ना बंदर जैसी हरकत की है, तो बंदर जैसी हरकत करके तुमने ये सारा गंदा मेरा कर्मंडल का जल गंदा कर दिया, अब वानर आके तुम्हारे तुम्हारे लंका को भी दूषित कर देंगे, तुम्हारे सर को भी दूषित कर देंगे, तुम्हारे साथ है ना बंदर ऐसा व्यवहार करेंगे। तो उनके श्राप के कारण भी वानर जो है वो रावण पर विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने आध्यात्म विद्या का प्रचार किया। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 10.32 में उस विद्या के विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यम चैवाम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम् वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो उसी आध्यात्मिक विद्या को देने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान, ये भगवान की असीम कृपा है कि अभी ये सत्युग की बात है, यानी कि अभी तो सत्युग चल रहा था और तभी से भगवान ने आध्यात्मिक विद्या के जीव मात्र इतना भुलक्कड़ है कि संसार में आकर वेदों को पढ़ के भी जीव क्या सोचता है कि मुझे कुछ प्रसन्नता प्राप्त होगी, शरीर को प्रसन्न करूंगा तो ही मैं सुखी होगा, लेकिन मैं आत्मा हूँ, शरीर को प्रसन्न करने से मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा, मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिलेगी, बात उसको समझ में नहीं आएगी। तो तब से भगवान श्री कृष्ण जैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं कि समझ जाओ काम की पूर्ति से इंद्रिय भोग से तुम्हें कभी संतुष्टि मिलेगी नहीं, तुम आत्मा हो, आध्यात्मिक पथ पर यदि तुम उन्नति करोगे, जैसे जैसे आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करोगे, अभी भी तब से भगवान ने ही ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन अभी तक देखो हम देखते हैं कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं नजर आता जहां पर आपको ये बताया जाए कि आप यह शरीर नहीं हो, आप आत्मा। सब जगहों पर ये बताया जाता है आप कैसे इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा अच्छा, ज्यादा से ज्यादा सुखी, ज्यादा से ज्यादा सोफेस्टिकेटेड बनाओ, बस ये बताया जाता है। जब हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे नहीं, आध्यात्मिकता में जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे, और हमारे शुरू हमारे जो शास्त्र हैं वो शुरू होते हैं इस बात से, अशोचानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषत गदास्व ना गदास्व नानु शोचंती पंडिता। ज्ञान तो ज्ञानी तो वही है जो इस शरीर के अंदर कोई भी आसक्ति नहीं रखता है, जो इस शरीर को अपना मानता ही नहीं है। वो समझता है कि मैं मुझे ये शरीर मिला इसलिए है कि मैं कैसे आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकूं, इस भौतिक जगत के जंजाल से भावजाल से छूटकर भगवान को प्राप्त करूं। तो यही शिक्षा देने के लिए उन्होंने प्रहलाद और अन्य को शिक्षा दी और यही दत्तात्रेय के आने का कारण था। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि चलो ठीक है, अत्रि मुनि को ये पता नहीं था कि भगवान कौन है, जगदीश्वर कौन है, लेकिन फिर भी भगवान को तो पता था ना कि मैं जगदीश्वर हूँ, तो भगवान को ही प्रकट हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान ये बताना चाहते हैं कि जैसी जैसी तुम्हारी मनोवृत्ति होगी ना, वैसे वैसे ही मैं तुम्हें दर्शन दूँ। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजामि हम, है ना। तुम जिस इच्छा से जिस भाव से मेरी शरण में आओगे तो मैं उसी भाव से तुम्हें दर्शन दूंगा। अगर तुम कृष्ण मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा दर्शन चाहता हूँ, हे कृष्ण मैं तुम्हें तुम्हारा साक्षात्कार करना चाहता हूँ, कृष्ण तुम मेरे सामने आओ, तो भले वो पुत्र के रूप में भी उसे बोलेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा, वो पिछले जन्मों में भगवान को ही याद करके भगवान की तपस्या करते हैं कि तुम आओ विष्णु भगवान की देरेख से कि आप आइए और हमारे पुत्र बनकर हमारा पुत्र बनिए, हमें सौभाग्य प्रदान कीजिए। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, जगदीश्वर कहा ना, विष्णु भगवान या किसी पर्टिकुलर भगवान को नहीं कहा, तो फिर वो इसलिए सभा, यानी कि भगवान इतने कृपालु हैं कि आपकी मनोवृत्ति के अनुसार ही वो आपकी, भगवान से बताते हैं यो याम याम तरम भक्ता श्रद्धया शितुम इच्छति तस्य तस्य अकराम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। यदि कोई किसी भी देवता की भी श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी ओर जाता, तो मेरी ड्यूटी है मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। यानी कि ज्ञान आपको प्राप्त करना है, भगवान ने पहले से ही शास्त्र दिए हैं, आपके उत्पन्न होने से पहले ही भगवान ने लिख दिया शास्त्र में कौन जगदीश्वर है, कौन ईश्वर है, कौन परमेश्वर है, कौन भगवान है, सब कुछ पता है। ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद उसको खोजने का तरीका, भगवान कहते हैं 15.2 में तत्तः परम पद परिमार्गितव्य, उस जगह की खोज करो जहाँ से जाने के बाद आना ना पड़े, उस भगवान की खोज करो यज्ञत्वा ना निवर्तन्ते, जिसके पास जाने के बाद वापस आना ना पड़े। तो उसके बाद अगर हम अपनी बुद्धि को यूज नहीं करते, शास्त्र को अध्ययन नहीं करते, तो उसमें भगवान का क्या दोष है। हमें हमें भगवान ने जीवन दिया, बुद्धि दी, शास्त्र दिए, तो उसके अनुसार ही हमें भगवान बार बार आते हैं। अभी देखो बार बार आए, कभी सांख्य योग दे रहे, तो कभी है ना नारद मुनि के रूप में पंचरात्र ग्रंथ देकर भक्ति योग बता रहे हैं, तो कभी है ना यहाँ आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि जीव मात्र अपनी अज्ञानता को ना समाप्त करके ज्ञान प्राप्त करके मेरी शरण में आए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की ये योजना है कि जीव को ये बताए कि आप क्या किसकी शरण में जाओगे तो आपको परफेक्शन मिलेगी, किस तरह से भगवान की अपने आप को आत्मा मानकर भगवान का अंश मानकर भगवान की यदि हम कृष्ण की हम सेवा करेंगे और कृष्ण को ही अपना परम भगवान मानकर परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करेंगे तो फिर कृष्ण हमें अवश्य स्वीकार करेंगे, हमें अवश्य दर्शन देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण।